चार रीति है, चाहे तो संसार को परमात्मा की परमात्मा में देख लो और चाहे परमात्मा को संपूर्ण संसार में देखो। और चाहे परमात्मा का संसार यूं समझो, चाहे परमात्मा का ही स्वरूप है। तो सातवीं भक्ति में वही मय जग देखे, संपूर्ण जगत को भाऊ भगवान मय देखे, भगवान ही भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवी प्रभु वैष्णव, अनेक रूपों से भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवान के कल्पवाणी में ऐसे कहना है कि मैं ही अनेक रूप से प्रकट होता हूं, तो वे ही लीला करें तरह तरह की, दिख रहा है वो सबका सब भगवान का स्वरूप है और जितनी क्रिया होती है वो सबकी सब भगवान की लीला है। वे लीलाधारी अनेक रूप से होकर के अनेक तरह की लीला कर रहे हैं। ऐसे सामान्य रूप से सब में परमात्म तत्व को देखे, वो तत्व का भाव हो, मानो भगवत दर्शन हो। इसमें भी कहते हैं कि मोहते हैं अधिक संत करिलेख, संतों का इनसे भी अधिक भाव उनके संतों के प्रति। संसार सबका सब भगवानमय हो गया तो संत है भगवान से भी अधिक, क्यों? भगवान की प्राप्ति करा देते हैं, भगवान को दिखा देते हैं, भगवान की बात बता देते हैं। मोते अधिक संत करी लेख, हृदय में उनका आदर विशेष, सब जगत जैसे भगवान में है, भगवत स्वरूप है, संतों में वहां विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल भरा रहता है पर जहां कुआं होता है वहां जल मिलता है, पानी की कल भी लगी रहती है तो पाइप में सब जगह जल रहता है परंतु वो ऐसे भगवान सब जगह परिपूर्ण रहते रहते हुए भी मिलते हैं संतों के यहाँ। भगवान के मिलने के कई ठिकाने हैं ऐसे। एक भगवान ने बताया कि सर्वज्ञ यज्ञ प्रतिष्ठिता, स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की सेवा ही करने का जिनका भाव होता है वहां भगवान नित्य रहते, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता। तो क्या और जगह अनित्य रूप से रहते हैं? कहते अनित्य रूप से नहीं, क्योंकि तो नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठा का क्या अर्थ हुआ कि वह प्राप्ति करने का स्थान है, वहां कोई जानना चाहे तो प्राप्त हो जाए। जैसे कोई अपना ठिकाना बता दे कि अमुक अमुक हमारा ठिकाना पता है भाई, इसलिए भगवान अपना ठिकाना बताते सारु हृदय साधु नाम हृदय तो हम संत महात्माओं का हृदय बताया, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे कि जहाँ प्रेमी भक्त भगवान की कथा करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की लीला गाते हैं मस्त होकर के, तो वहां मैं रहता हूँ। वहां विशेषकर भगवान रहते हैं, भगवान की जहाँ चर्चा होती है गहरी गहरी वहां भगवान रहते हैं। इसकी क्या पहचान है कि वहां एक आनंद आता है, विशेषता से प्रसन्नता होती है। सब जगत को देखते हैं तो भगवत स्वरूप देखकर देखते हैं, पर आनंद उतना नहीं आता जैसा संत प्रसंग में आनंद आता है। तो आनंद रूप से विशेष रहते हैं, विशेष सामान्य रूप से सब जगह रहे साथ हैं, सब मोह मय जगत देखे पर मोते अधिक संत गरी ले जाए। तो वहां भगवान का प्राकृत्य विशेष होता है, भगवान कोई छोटे बड़े नहीं होते, थोड़े ज्यादा नहीं होते। वे और जगह तो कम रहते हैं, वहां भगवान ज्यादा रहते हैं, ऐसे भगवान ज्यादा कम नहीं। परंतु जितना जितना आवरण हट जाता है, जैसे पृथ्वी का आवरण हट जाता है जल मिल जाता है, ऐसे जितना जितना आवरण हटा रहता है वहां भगवान विशेषता से मिलते हैं, कोई उनकी प्राप्ति चाहे तो। और जहां आवरण है वहां भी अगर कुआं बना दिया जाए तो मिलेगा, पर मेहनत बहुत पड़ेगी। इस वास्ते किसी संत ने कहा है, रे मत हरिशो प्रीति कर और हरिजन से कर हित। भगवान से क्यों प्रेम करता है? भगवान के प्यारे भक्तों से हित करो। हरि जे जग देत है, हरि भगवान रीझ जाए तो कबू कर करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु से नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु। मानव शरीर देते हैं और मनुष्य शरीर कैसा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरकों में जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, अपवर्ग मुक्ति में जा सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, भगवान की शुभ भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये भगवान तो सब रसवा दे देते, खुशियां हो जाओ जगत को दे देते हैं जगत। और हरिजन हरि ही देत, भगवान के प्यारे भक्त है वो जगत नहीं देते। निष्काम भाव से करो भाई, कामना में क्यों फंसते हो? हरि ही दे रसीदे, हरि की तरफ भी लगाते हैं। इस वास्ते हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो बहुत अधिक संत कर लेंगे। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, क्यों? हरि हेरिया सब जगह मिले, सब में ढूंढो तो भगवान हरे मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, वस्तु में, जड़ में, सेवन में, स्थावर में, जंगम में, जहां ये ढूंढे वहीं मिल जाए, थम्भे में से प्रकट हो गए। तो हरि हेरिया सब जगह मिले, पर हरिजन कहीं है को बता देगा, देखो बेटा ये धन है, ये तुम लेना, ये हमारा धन, ऐसे अपने हृदय की बात कहते हैं। तो भगवान भी जिस पर कृपा ज्यादा करते ऐसे अपने प्यारे हृदय के धन को दे देते हैं। हमारे खजान में ये है, बढ़िया ले जाओ भाई, ये खजाना है। ऐसे मिल जाए तो मोते अधिक संत करी ले। ये बात है, कैसी बढ़िया बात। तो ऐसे भगवान की सातवीं भक्ति है, सब जगह प्रभु को देखता रहे और संतों से विशेष लाभ उठावे, नाम जप करे, कीर्तन करे, बात हृदय की पूछ सके। सज्जनों, संत महात्माओं से बात मिलती है विलक्षण, अगर उसको पकड़ ले आदमी तो सुगमता से कल्याण हो जाए, सरलता से सीधा सीधा। एक बात याद आ गई, हरेक को अपनी अनुकूलता अच्छी लगती है और प्रतिकूलता बुरी लगती है, परंतु प्रतिकूलता में जितना लाभ है उतना अनुकूलता में लाभ नहीं है। कुपत मांग दिम व्याकुल, वृद्ध व्याकुल रोगी, रोगी है व्याकुल रोगी, वो कुपत मांगता है। कुपत, कुपत अच्छा लगता है, पथ्य अच्छा नहीं लगता, परंतु पथ्य पालन करने से रोग दूर हो जाता है। तो ये जो अपने मन के प्रतिकूल घटना घटती है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, घटना है, क्रिया होती है, तो ये औषध होती है, दवाई है। दवाई दवाई देखने में कड़वी दिखती है, परंतु वास्तव में फल उसका बड़ा मीठा होता है। ऐसे प्रतिकूलता बुरी लगती है, परंतु फल बड़ा मीठा होता है। प्रतिकूलता है वो तो आनंद लेने वाली है, जिसको तो चाहना नहीं रखती, और अनुकूलता है फंसाने वाली, उसकी चाहना रखती। ये बड़ी गलती बात, जैसे फंसे उसको चाहते, ये चाहिए हमारे, इस बिना हम फंसेंगे नहीं, इस बात से हमारा अनुकूलता हो जाए। अरे भैया फंस जाओगे, भगवान ने इस बात से ये संसार है दुखालय, दुखालय रचा है जिसमें कोई फंसे नहीं, तो भी लोग फंस गया, ये सुखरूप बनाते जाने क्या दशा हो जाती। सुख ढूंढते दुखालय में, सुख ढूंढते भगवान कह रहे दुखालय है, बोले है ना औषधालय, ये भोजनालय, ये वस्त्रालय, ऐसे इसके बोर्ड लगा दुखालय, संसार के ऊपर बोर्ड लगा दुखालय। अशाश्वतम, अरे वो दुखालय भी ठहरता नहीं, वो भी मिट जाएगा, उसमें कोई काम चलाओ, दुख सुख है जो सही रहेंगे, रह सकोगे नहीं। ऐसा ही संसार है दुखालय। तो दुखालय किसके लिए है? जो सुख चाहता, अनुकूल चाहता है उसके दुखालय है, और सुख की इच्छा छोड़ दे तो दुखालय मिट जाए, दुखालय का दिवाला निकल जाए। कोई दुख मांगे लावे कहां से, दिवाला निकल गया भाई, दुख तो रहा ही नहीं, सुख की इच्छा ही नहीं रखे तो दुख आएगा ही नहीं। मनुष्य अपने सुख की इच्छा का त्याग कर देता है तो अनुकूलता से तो असंग हो जाता है, और प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। अपनी हेकड़ी छोड़ दे तो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता बदल जाती है, कि मौज हो गई आज से, आनंद हो गया, कैसी मौज की बात है, क्या समझे नारायण। प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है, अनुकूलता कैसे है कि हम अनुकूलता चाहते ही नहीं, इस वास्ते प्रतिकूलता अनुकूलता ही है, अपना तो ठीक ही है। ऑपरेशन करता है तो बुरा लगता है, परंतु तो बीमारी मिटती है, इस तरह से ये दुख आता है तो उसे बीमारी मिटती, अपना अहंकार मिटता, अभिमान मिटता है, दूसरा हमारी मानता नहीं, तो बहुत ही बढ़िया निहाल हो गए तुम। जितने मानने वाले कुटुंबी है ना, इनसे खतरा है, और नहीं माने उसे खतरा नहीं है, उन बेचारों ने तुम्हारे वो छुट्टी दे दी। मुक्ति के लिए उन लोगों ने तो आपको खुल कर दिया, अब आप आज आप जाकर फंस आपकी मर्जी, तो मुक्ति कर देते हैं ले जाओ। क्यों फंसता है? अनुकूलता में प्रतिकूलता में फंसता तो है ही नहीं, अपने संसार में फंसना है नहीं। जो संसार में नहीं फंसना चाहता उनके लिए प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है, और अनुकूलता आती है तो उसे मतलब नहीं, अनुकूलता चाहते ही नहीं तो असंग रहता है, उसे फंसता ही नहीं। तो संसार सदा ही आनंद देना नित्यंत समचित तत्व में इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति, इष्ट अनिष्ट उत्पत्ति में सदा ही समचितता रहती है, मौज रहती है, सदा आनंद रहता। अपना उद्योग कर लिया, जो कहना था कह दिया, अपना बारी निकाल दी, अब हो जाए तो अच्छा, न हो जाए तो अच्छा, तो उसमें बड़ी मौज रहती, बड़ा आनंद रहता। अपने जो दृष्टांत दिया करते, कुम्हार था, कुम्हार वो गया घर पर कि जा लाओ रोटी, लाओ रोटी, जब रोटी लाएगी जाएगी घर में तो दाना तो है नहीं, अनाज है ही नहीं, किसी की बनाओ रोटी अच्छा। उसने कहा भाई अब भूख तो लगी है, क्या करें? एक हांडी लेकर पहुंचा गांव में, तो ये हांडी ले लो, अच्छा भाई लो, क्या लोगे? कितना बाजरा दे दिया उसने, ऐसे ही गांव में होता था सोता, बाजरा दे दिया, हांडी ले ली, वो ले जाकर अपने स्त्री को दे दिया, स्त्री ने उसकी रोटी बना दी, भोजन हो गया। दूसरा दिन मिला तो वो लेने वाला कहने लगा, अरे ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, अरे तुमने फूटी हुई हांडी दे दी, वो तो यार चढ़ी नहीं, तुम्हारी हांडी चढ़ी नहीं। कुम्हार बोले हमारी हांडी चढ़ गई, हमारे तो रसोई बन गई, हांडी चढ़ना कहते ना रसोई बनने को, तो हमारी हांडी चढ़ गई भाई, अब जिसकी फूटी हो जाए। ऐसे जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर दे तो हमारी हांडी तो चढ़ गई, अब वो माने न माने मर्जी उसकी, हमारा तो काम इतना है, कर्मण्येवाधि कारण से माँ फले सु कदाचन, बहुत ही मौज की बात है। और उनसे स्नेह अधिक करना चाहिए, जो नहीं माने समझे कि हमारा उद्धार करने वाले हैं, ये हमारा कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ज्यादा ज्यादा मानते हैं महाराज महाराज लंबा लंबा हाथ जुड़े दंडोत करे, खतरा है यहाँ यहाँ फंसोगे जी। बड़े बड़े बाबा लोग फंस जाते हैं और तार ना करने वाले के यहाँ फंसावट नहीं होती, वहां से तो निर्लेप रह जाने को, मौज से आनंद से निशंक रहो, वहां जहां मान्यता करे आदर करे वहां डरते रहो भाई, यहां खतरा है खतरा, ये कहीं लिखा होता है डेंजर, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे आते कि मत जाओ भाई, यहां बिजली है कहीं लग जाएगी, कहीं चढ़ जाएगी, मर जाओगी कहीं, तो ये खतरे की चीज है, जहां आदर सत्कार मान ज्यादा होता है ये खतरे की चीज है, यहां फंस जाओ। तो ऐसी चीज है वो हमारे उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली है, जो प्रतिकूलता आती अनुकूलता में खतरा है, प्रतिकूलता में निस्संग रहो बस, यहां निर्बंध रहो, कोई बांधने वाला नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात, कोई माने तो अच्छी बात, न माने तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अपने अपना काम कर दिया तो हमारी हांडी तो चढ़ गई, ये बात, तो ये बात कोई बता दे तो एकदम कांटा निकल जाओ, ये बात है ना, नहीं तो बहम रहता है, अनुकूलता अनुकूलता मिले अनुकूलता मिले, अनुकूलता मिले हमारा कहना दुनिया माने ये इच्छा रहती है, इसका तात्पर्य समझेगा नहीं, कि भाई रस्सा में मेरे को कोई बांधो, आओ रस्सा से बांधो भैया, मेरे को बांधो, मैं कहीं खुला न रह जाऊं, बांधो चारों तरफ से, जकड़ दो मेरे को, ऐसी इच्छा करना है क्या, हमारा कहना माने करूं, कहना मांगने में बांध है ये तुम्हारे प्रिय स्वांग रोत से ये प्यारे लगते ऐसे लगते ये तुम्हारे को रुलाएगा रोना पड़ेगा इनके लिए वियोग तो होगा क्योंकि यहाँ की चाल यही है कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ सिर काल से यही रिवाज नहीं जाएंगे तो सही और हम चाहते हरवे चले जाएंगे तो अतुल परिताप आए मन सर मन को बड़ा संताप होगा और हम पहले से ही छोड़ दें उनकी आशा ही छोड़ दें इच्छा ही छोड़ दें तो फिर तो शांति शांति रहे तो मौज चले जाए तो मौज अपने तो आनंद ही आनंद रहेगा इस बार के संसार में हमारा कहना नहीं मानते हैं बड़ा भारी उपकार करते हैं हित करते हैं हमारा कल्याण करते हैं परंतु कुपुत अच्छा लगता है क्या करें तो ये संत लोग बतावे इस बात को मान ले संतों ने शास्त्रों की बातें कही दुखे सुरंत दुर्गन बना सुखे सुखाई सुख में स्त्रिया मत रखो दुख में उद्विग्न मत हो वीतराग भय क्रोध सिद्धि मुद्दे वीतराग भय क्रोधा मन मया माँ उपासता बहु ज्ञान तम सापूता मद्भाव माँ गता बीत राग भय हो जाते वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते संसार में ठीक और बैठी या दो चीज बिल्कुल विरुद्ध आचरण हो जाए प्रतिकूल आ जाए दुखी हो जाए अनुकूल में राजी हो जाए ये दोनों बंधन है तो ये इसके परिबंध है ये इसके परिबंध है मार्ग में लेते रहे और इनको दोनों के वशीभूत न तो न बस मान रखे न अनुकूलता करे न प्रतिकूलता करे प्रतिकूलता पर द्वेष नहीं करे अनुकूलता पर राग नहीं करे पर राग द्वेष रहित रहे अपने हरदम मस्त रहे तो सम दुख सुख स्वस्थ भगवान मिल जाए सम दुख सुख स्वस्थ सम दुख सुख होने से वो हो जाता है सम तो सम है वो क्या है सम है ब्रह्म तो संसार को जीत गया सर्वो ये सांग साम्य स्थित मना जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया वे संसार को जीत गए अरे सुख की चाह नानू को चाह ना वे संसार फंस गए फंस नहीं इस बार तो भगवान ने कहा अपने आप मित्र है और आप ही अपना शत्रु है अपना उद्धार कर ले अपना मित्र अपना पतन कर ले अपना शत्रु तो अपना पतन कौन करता है अपना पतन करता है जो वो हार जाता है ना संसार से कौन हारता है जो संसार की चाह ना रखता है वो संसार से हार गया गुलाम बन जाता है और संसार से हारता नहीं संसार से अनुकूलता की चाह रखता ही नहीं तो जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित जितात्मा है संसार को जीत गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी निर्दोष में समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्मण देशता तो ये ऐसी प्रतिकूल घटना आती है केवल उद्धार करने के लिए मनुष्य चेतता नहीं अनुकूल की इच्छा कर लेता है अनुकूलता में अनुकूलता आती है तो भी उसको बहुदार प्रतिकूलता में अनुकूलता इच्छा रखता है आप एक तरफ लगा रहता है अरे सब तरफ हो जाए परमात्मा सब जगह मौजूद है उसमें नहीं तो दुखे सोनो दिग्र मना सुखे सुख विगत अस्थिर मौजूद नारायण 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 मोहन अधिक सुंदर कर लेगा लालो वंशी बजाव मारो वालो रे
कृष्ण कन्हैया नदी को लालो वंशी बजाव मारो वालो रे
वंशी बजाव वालो गोवाज रावे गुयल सुनावे मारो वालो
वाह वाह
કનૈયો નંદજી નો લાલો વંશી બજાવે મારો વાલો રે
को रात्रि 8 बजे स्वर्गाश्रम में गीता भवन नंबर 1 के बगीचे में दिया गया। राम राम राम
नारायण नारायण।
गोपाल जाताय तोत्र वेत्रय गोपाणय ज्ञान मुद्रा जगदृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशीभूषितगरान् नवनीतराभात् पीताम्बरालरुणबिम्बकलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले तेजथालाभ संतोषा स्वप्न नहीं देखई पर दोषा राम सहित मानस की नौथा भक्ति चल रही है। भगवान राम सौरी की अगड़ी कर रहे हैं। तो सातवीं भक्ति में बताया कि सब संसार को मेरा स्वरूप समझे और मेरे से संतों को अधिक समझे। तो भगवान सदैव ही भक्तों की महिमा गाते आए हैं। भक्त लोग भगवान की एक विशेष महिमा गाते हैं। तो यह सब संसार को जब अपना स्वरूप बता दिया तो संसार में विशिष्टता भगवान के भक्तों की है। तो सातवीं भक्ति में संसार को मेरा स्वरूप समझे और मोते अधिक संत करी लेखे। संतों का आदर मेरे से अधिक होना चाहिए। जगत मात्र संसार भगवान का स्वरूप परंतु संत महात्मा है वहां भगवान विशेषता से प्रकट है। शायद जैसे पृथ्वी में सब जगह जल होता है परंतु जहां कूप होता है वहां जल मिलता है, ऐसे ही वे भगवान सब जगह सब जगत है स्वरूप है। मोही मय जगत एक केवल भगवान मय है। परंतु होते हुए भी उनकी विशेषता से अभिव्यक्ति भक्तों में होती है। इस वास्ते मोते अधिक संसार मात्र से अधिक भक्तों को देखे जहां मेरी प्राप्ति साक्षात हो जाए। ये भगवत प्राप्ति के स्थान है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से रुकी स्थिति। हृदय में रहते हैं भगवान के और जगह नहीं रहते। वो उपलब्धि स्थान है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित हम यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित अपने को बताया। तो सर्वश्रेष्ठ हम भीषण निवेश कर हृदय में रहते हैं भगवान। यज्ञवानों कर्तव्य कर्म मात्र में जो भी ठीक निष्काम भाव से किया जाए तो उसमें भगवान रहते हैं। भगवान की प्राप्ति का ये स्थान है। आवाज में देखो खड़े बात होती है। एक आवाज कम पहुंचे से बोले संसार मात्र में परमात्मा परिपूर्ण है। ओ मोहिमय जगदे के का तात्पर्य जैसे मृणमय होता है पात्र होता है तो वो मिट्टी का ही होता है, ऐसे भगवान साक्षात भगवत स्वरूप है। तो सब संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। चाहे परमात्मा को सब संसार में व्याप्त माने और चाहे सब संसार परमात्मा के अंतर्गत है ऐसा माने और चाहे ये दीखता है सबका सब ही ये परिवर्तनशील तो ऊपर की तोलियर है साक्षात परमात्मा ही ऐसा माने और नहीं तो कम से कम ये माने ये सब परमात्मा का है। इसके मालिक परमात्मा है। इनमें सब जगह परिपूर्ण है, बल्कि मालिक परमात्मा है। ऐसा बोल ऐसे परमात्मा के मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परंतु प्राप्ति करने में संतों का हाथ विशेष होता है। संत जो भगवत प्राप्त हो चुके, वे साधु आश्रम में हो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, वो पुरुष रूप से भी हो सकते हैं, बहनों माताओं के रूप में भी हो सकते हैं। उनके कोई खास ऐसा नहीं, अमुक समुदाय में ही ऐसे महात्मा संत होते हैं, हरेक समुदाय में हरेक वर्ग में हो सकते हैं। वास्तव में संत भाव है, वो व्यक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति का ऐसा ठेका नहीं, किसी समुदाय का ठेका नहीं, वो तो जो भगवान को ठीक तरह से जानते हो वे संत हैं। उन संतों से उस तत्व की प्राप्ति होती है। मानो जिस विषय को जो जानता है उस विषय में वही बता सकता है, जो जान में वही बता सकता है, जो जानता नहीं तो क्या बताएगा। क्योंकि गीता में तो आया है, आश्चर्यवत पश्यति कष्ट देन माश्चर्यवत वदत तथैव चान्य। कोई एक परमात्मा को जानता है और अन्य वदति, दूसरा कोई कहता है, उसे सिद्ध होता है कि जो जानता है वो कहता नहीं है, उससे अन्य है कहने वाला, और कहने वाला अन्य है, तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि कहने वाला जानने वाला नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कष्ट देनम आश्चर्यवत भरत सही बचान्य। तो ये कैसे बात हुई? तो ये बात कही जाए जानने वाले ही कह सकते हैं, तो यहां तो बात नहीं है, विरोध आ गया। कहते यहां अन्य का तात्पर्य ये नहीं है कि जानने वाले से ये दूसरा होना चाहिए और कहने वाले से दूसरा जानने वाला होना चाहिए, ये तात्पर्य नहीं। आश्चर्यवत पश्यति कष्ट देना एनम कष्ट आश्चर्यवत पश्यति, कोई एक इस तत्व को आश्चर्य की जो जानता है, मानो सांसारिक विषय जैसे जानने में आते हैं ऐसे ये जानने का विषय नहीं है, विलक्षण है। और अन्य का तात्पर्य जैसे कष्टित बात आई, कष्टित शब्द आया, तो कोई एक होता है, तो बहुतों में कोई एक होता है वो जानता है। तो अन्य कहने का तात्पर्य जानने वालों में भी कोई एक कहने वाला होता है, तो अन्य का तात्पर्य उससे भिन्न नहीं, कोई एक ही होता है। आया न कि शतेषु जायते शूर सहस्रेषु पंडित और वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानव। सैकड़ों आदमियों में एक शूरवीर होता है और हजारों में एक पंडित होता है और वक्ता दस सहस्र, दस हजार आदमियों में कोई एक वक्ता होता है, दस पंडितों में एक पंडित एक वक्ता होता है। अर्दाता भवति वानव, तो कहने वाला है जो सब जानने वाले सभी कहने वाले नहीं होते। इसमें तात्पर्य अन्य का है, उसके सिवाय ऐसी बात नहीं। ऐसे उस परमात्मा को जानने वाले भी दुर्लभ हैं। इस वास्ते भगवान कहते हैं मेरे से अधिक, मैं तो संसार स्वरूप से और वो मेरे से अधिक है। ऐसे जानता ये साथ में भक्ति हो जाती है। आठ जथा लाभ संतोषा सुपने हूँ नहीं देखही पर दोषा। आठ में भक्ति होती है, उसमें कहते हैं आठ है जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते, जो प्राप्त हो गया उसमें। और दूसरी बात सुपने उन्हें देखें पर दोषा, दूसरों के दोषों को सुपने में भी नहीं देखते। तो वृक्षा लाभ संतुष्टो बनवाती तो विमत्सर समस्त सिद्धाव सिद्धों से कृत्वा विद्यते। ये वृक्षा लाभ संतुष्ट है, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहते। अर्थ तो ये पड़ता है जो अनुकूलता मिल जाए जैसी उसमें संतुष्ट है, परंतु लाभ ना प्राप्ति का है। वो प्राप्ति अनुकूलता की भी होती है, प्रतिकूलता भी की भी होती है। तो धन मिल गया वो लाभ हो गया, अगर दरिद्रता मिल गई वो भी एक लाभ है, मन प्राप्त हो गया। अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ प्राप्त हो जाए वे संतुष्ट सतत योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, हरेक परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट नहीं होते। तो जैसा मिल जाए जैसे कुछ मिल जाए उसी में वे संतुष्ट रहते, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो आठ है जथा लाभ संतोषा, और सुपने उन्हें देखें पर दोषा। तो जो मिल जाए परिस्थिति पर संतुष्ट रहे, तो संतोष के लिए विवेचन आता है कि संतोष त्रिशु कर्तव्य। लाभ की प्राप्ति के विषय का वर्णन है ऐसा, हानि का नहीं। संतोष त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र जैसे मिल गए और जैसा धन मिल गया और वक्त पर भोजन मिल गया, इनमें तो संतोष रखना चाहिए। और त्रिषु नैवच कर्तव्य, तीनों में संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जपदानयो, स्वाध्याय में जप में और दान में संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य इसका निकलता है कि पुराने किए हुए कर्मों के फल रूप से जो कुछ परिस्थिति मिलती है उसमें तो करना चाहिए संतोष, और अगर नया जो उद्योग करना है, पारमार्थिक मार्ग में चलना है, उस चरने में संतोष करना नहीं चाहिए कभी, उसमें तेजी से चलना चाहिए। तो विश्व नैवित कर्तव्य स्वाध्याय जब अदा नहीं हो, तो क्या है कि नए कर्म है। तो क्रियमाण कर्म, नए कर्म, शुभ काम, अच्छे काम, श्रेष्ठ काम करते ही चले जाए। मनुष्यों के उल्टी बात होती है, नित्य कर्म होता है वो करते हैं, और जब नित्य कर्म पूरा हो जाता है तो समेट कर बुद्धि को, पुस्तक को रख देते हैं, माला को भी रख देते हैं, आज का नित्य कर्म हो गया। तो इस स्वाध्याय में जपने में इसमें भी जप इतना हो गया माला का, बंद कर दो। दान पुण्य इतना कर दिया, बंद कर दो। इनको बंद कर देते हैं, इसमें संतोष कर देते हैं, बस आज का नित्य नियम पूरा हो गया। तो भाई इसमें पूर्ति नहीं होती, इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। धन कमाने में लगते हैं दुकान पर, तो 20 25 30 की बिक्री रोजाना होती है, आज सुबह 50 60 की बिक्री हो गई, तो ऐसा नहीं कि दिन भर दुकान बंद करेंगे, नहीं खोलेंगे, क्योंकि पैदा तो हो ही गई। तो भी वो खुली रखते हैं कि करते जाए, हजारों रुपयों की हो जाए तो भी वो काम चलता ही रहता है। जो भी उसकी प्राप्ति में, प्रारब्ध की मुख्यता, प्रारब्ध बिना दुकान दिन भर रहने से कहीं लाभ के बजाय घाटा भी हो जाए, परंतु फिर भी रखते वहां चाहिए। और पारमार्थिक साधना में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं, उसमें संतोष कर लेते हैं, ये गलती है। इस वास्ते भजन स्मरण में कभी भी संतोष न करें, करते ही चले जाएंगे तो करने का काम है, और जो प्रार्थ के अनुसार जो परिस्थिति मिल जाए उसमें संतोष रखे, उसमें हलचल करे नहीं, चिंता करे नहीं, क्यों चिंता करने से क्या होगा, वो तो है जैसा ही रहेगा और है वैसा आएगा ही। जैसे धन संपत्ति आदि है वो आती है तो कैसे आती है, जैसे दुख आता है तो आया है कि सुखम आयन्द्रे तत्व को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं, ऐसे परमात्म तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे भक्ति करने वालों में आठ है, जथा लाभ संतोषा, अपने तो संतोष रखे पर उसको बने हो नहीं देखा ही पर दोषा, दूसरों के दोष देखे नहीं सपने में भी। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखाई जगत काशन करही विरोध। जो भगवान के चरणों में रहता है, विगत काम मद क्रोध, अपने काम है न क्रोध है न मद है न अहंकार, कुछ अभिमान है नहीं, वे सब निज प्रभु मय देखाई जगत। सो अनन्य जाति असि मत न चले हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। जो कुछ देखने में आता रूप स्वामी भगवान है साक्षात, ऐसे भगवत बुद्धि वहां दोष कहां है। दोष तभी तक रहता है जब भगवान से अलग मानते हैं और अलग भी सत्ता स्वतंत्र मान लेते हैं, ये बड़ी मार्मिक बात है। भगवान के सिवा स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो उनके दोष का विचार तो वो तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले रहते होने वाले हैं। इस वास्ते कभी किसी का दोष देखे ही नहीं, अब देखे ही नहीं तो वर्णन भी कैसे करेंगे, तो क्यों तो देखें, क्यों सुने, क्यों कहें और क्यों चिंतन करें। तो दूसरे की बुराई का चिंतन भी न करें, दूसरों की बुराई सुने नहीं, दूसरों की बुराई कहे नहीं और करे नहीं, कि चार बात ठीक रहे तो अंत तक निर्मल हो जाए और फिर वे सपने ही नहीं देखें, पर दोष स्थिति हो जाएगी। ना दोष का कहना है, ना सुनना है, ना चिंतन करना है, ना वर्णन करना है, इनसे रहित रहे सपने हो नहीं देखें पर दोषा, ये आठवीं भक्ति होती है। नवम सरल सब सर छल हीना, नवमी भक्ति वह होती है बड़ी सरलता मन में रहती है, सब जगह इसी रापन सरलता है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव, किसी से कपट गांठ रख करके उसे नहीं बुरा नहीं चाहते, भीत में कपट रखते नहीं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई, ये संतों के लक्षण बताए। तो नाम सरल सब सन सरल और छल ही ना, कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं, सीधा अंतकरण सीधा सीधा स्वभाव है, और ममो भरोसा ही है, हृदय में भगवान का दृढ़ता से भरोसा होता है। न हर्ष बीना, वही बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति आ जाए तो कोई हर्ष ही बात नहीं, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए तो कोई दीनता नहीं, अपना स्वरूप है जैसा है वैसी मस्ती में, मम भरोसे ही हर्ष बीना, न हर्ष है न दीनता है, मेरा भरोसा है हृदय में, भगवान के भरोसे रहते हैं हर समय मस्ती में, ऐसे नवधा भक्ति है। ये नौ प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी से कही और अगर कहा जिसके नवम एक हुई, ये नौ प्रकार की भक्ति में से जिसके हृदय में एक भी भक्ति होती है और नारी पुरुष सचराचर कोई वो पुरुष हो स्त्री हो चर अचर कोई ज्ञान हो जिसके अंतर्गत में भगवान की नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति होती है सो वो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान कहते हैं कि शबरी वो मेरे को अत्यंत प्यारा लगता है जिसके हृदय में भक्ति होती भक्ति प्रियो माधव अतिशय प्रिय अत्यंत प्यारा होता है। ऐसे तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब जीव है मेरे ही है भगवान के अंश है सबगर भगवान का प्रेम है समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्योस्ति न प्रिय कोई द्वेष का और प्रेम का विषय नहीं है सब परमोरित बराबर आया सबके ऊपर दया बरोबर है व्याप्त भी सब भगवे भगवान सब पर है और सुहृदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सुहृद भगवान है तो सबके बिना हेतु कृपा करने वाले दया पूर्व प्रेम पूर्व स्नेह पूर्व दया रखने वाले ऐसे भगवान है। परंतु जिसके भक्ति होती है वो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे मेरे को अत्यंत प्यारा लगता है क्योंकि भगवान की भक्ति जिसके हृदय में उदय हो गई तो उसका दुख मिट जाता है बिना भगवत भजन के दुख नहीं मिटेगा तो दुख मिट जाए इसलिए भगवान राजी होते हैं। दूसरे मनुष्यों को तो कुछ मिलता है जिससे उससे राजी होते हैं और भगवान जिससे जीव का कल्याण हो जाए उससे राजी होते हैं। सूर्यम स्वरूप होता रहे भाई सब पर दया रखते हैं जो अपना उद्धार कर ले अपना सुधार कर ले भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले स्वरूप की प्राप्ति कर ले उस पर भगवान बहुत ज्यादा राजी होते हैं क्योंकि भगवान ने मानव शरीर दिया है उस जीव के उद्धार के लिए और उसने अपना जन्म सफल बना लिया तो भगवान खुश हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं बहुत राजी होते हैं। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। आरंभ में शबरी ने कहा था कि महाराज कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी मैं आपकी स्तुति कैसे करूं अधम जाति में जड़मति भारी जाति से भी अधम हूं मैं और बुद्धि भी मेरी बड़ी जड़ है स्तुति आपकी मैं कैसे करूं अपवित्र हूं मैं सब तरह से अधम अति अधम अधम अति नारी तिनमह मैं मति मंद अघारी ऐसी हूं मैं। तो ऐसे जो कहा तो भगवान कहते हैं भाई मानव एक भक्ति का नाता मैं तो भक्ति का नाता मानता हूं और जिसके एक भी भक्ति होती है वो भी अतिशय प्यारा होता है तेरे तो नौ प्रकार की भक्ति भी दृढ़ है दृढ़ सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ऐसे कहने से एक शंका आती है आरंभ में कहा है कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही सावधान सुनो और धरु मन माही तेरे सामने नौ प्रकार की भक्ति कहता हूं सावधानी से सुनो और मन में धारण करो। तो सावधान सुनो धरु मन माही तो मन में धारण करो ये भगवान आज्ञा देते हैं नौ प्रकार की भक्ति धारण करने के लिए और अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे तेरे सब प्रकार की भक्ति दृढ़ हो गई। तो दृढ़ अभी तो धारण ही नहीं हुई पहले दृढ़ कैसे हो गई और पहले ही दृढ़ है तो मैं नौधा भक्ति कहता हूं सावधानी से सुनो और धारण करो ये कहना कैसे बना। इसका तात्पर्य कि शबरी में भक्ति नहीं थी ये नहीं है भक्ति थी पर सबरी सबरी तो भक्त थी भगवान की, सबरी कोई पंडित नहीं थी। उसमें क्या फर्क है कि भक्त होते हैं उनमें एक विलक्षण बात होती है, अपने में विशेषता तो दिखती नहीं और कमी रहती नहीं, अपने में कोई श्रेष्ठता तो उनको दिखती नहीं, औरों की प्रयोग समय में क्या विशेषता ऐसी दिखती नहीं और कमी कुछ रहती ही नहीं। तो सकल प्रकार भक्ति दृढ़ थी सबरी के, परंतु सबरी को ये पता नहीं कि भक्ति के नौ प्रकार होते, क्योंकि वो व्याख्यानदाता थी नहीं। व्याख्यानदाता होते वो पढ़ने कितने इसका विवेचन करना पड़ेगा, तो वही पुस्तक देख लो विचार कर लो कितने प्रकार होते हैं। वो तो भजन स्मरण करने वाली थी, इस वास्ते भगवान कहते हैं कि नौ प्रकार की भक्ति होती है, तो सावधानी से सुनना तेरे को मैं बताता हूं। तो पहले नौ प्रकार की भक्ति सीखे पीछे भजन करे, ये लोगों की रीति, और भक्तों की रीति है कि भजन में लग जाए नौ और दस प्रकार जो कुछ आप ही आ जाएगा स्वतः ही स्वाभाविक ही। तो सभी तो ऐसे भजन करने वाली थी, वो कोई प्रकार सीखने वाली नहीं थी। अब प्रकार सीखे बिना श्री रघुनाथ जी महाराज पधारे तो कह दिया इसको बात भी बता दो नौ प्रकार की होती है भक्ति। इस वाले सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे तो हृदय में सकल प्रकार की भक्ति है। भक्ति से भगवान राजी बहुत होते हैं। तो ये भक्ति के प्रकार रामायण के अनुसार बताए, ऐसे भागवत में श्रवणं कीर्तनं विष्णु वो तो ऐसे नौधा भक्ति आती है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा अपने पिताजी से श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे नौ प्रकार की भक्ति बताई। इस तरह की भक्ति भगवान की होती है, जिसके वो बड़ा भारी भाग्यशील है जो भगवान की भक्ति है। नारायण 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 आ रहा है। तो गंगा जी की महिमा तो अपार है भाई, गंगा जी का इष्ट कोई रखता है ना। ये शास्त्रों में एक बात आती है याद आ गई, गंगा जी की महिमा कहें तो गंगा जी की महिमा तीर्थराज और जमुना और सरस्वती सबसे बढ़कर के, जमुना जी की महिमा कहने लगे तो गंगा जी से तीर्थराज से बढ़कर के, तीर्थराज की महिमा कर गंगा जमुना सबसे बढ़कर के। तो मनुष्य चकरा जाता है, बात क्या है अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय सवानी च, ये तो श्लोक मानो कोई सब ने अपना कर ही रखा है। कलांगना रंत छोड़ सिम एक धर्म दूसरा धर धर तीस धर्म, ये इस तरह की महिमा आती है। तो कौन सी ठीक है, कहते सब बातें ठीक है, एक साधारण महिमा होती है, एक उसका इष्ट होता है, दृढ़ता से जो इष्ट रखता है उसके सामने वहां सर्वस्व मिल जाता है। तो गंगा जी का जिसके इष्ट होता है उसके लिए गंगा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। इस गंगा जल को लेकर वे मस्त रहते हैं, गंगा जी के दर्शन करके आचमन करके मस्त रहते हैं, उसी किनारे रहते हैं, ऐसे कई संत हो गए हैं। तो कहते हैं कोई भगवान को निराकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, वे कहते हम तो निराकार मानते हैं, निराकार उपासना है, भगवान निराकार से चल रहे हैं। तो ब्रह्मद्रव कहते हैं इसको ब्रह्मद्रव। तो वास्तव में ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा ही ये जल रूप से बह गया। तो बहुत सी बातें हैं नारायण, एक संत थे उनकी बात मैंने सुनी है, जो उनका संग करने वाले थे उन्होंने लिखा था, उनके लेख पढ़ करके हमने सुना देखा है पढ़ा है। तो वहां एक संत रहते थे गंगा जी के किनारे, बस घूमते रहते, कभी गंगा में उधर चले गए, गंगा गंगा में इधर आ गए, गंगा जी किनारे पर रहना, माँ 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 करते गंगा जी किनारे, अपने गंगा जी की उपासना, बड़े अच्छे सिद्ध संत हो गए, ऐसी बात सुनी। तो लोग आते उनसे पूछते कुछ डाले, कुछ को कोई बात बता देते तो वो सिद्धि से लाभ लेते अपना, वे अपने ऐसे ही मस्त रहते। तो उन्होंने कहा भाई अब कल तो हम गंगा पुत्रों को भोजन देंगे। अच्छा महाराज कैसे, आटा ले आओ, कई बोरा आटा ले आए, आटा छान करके ठीक तैयार करके, और महाराज बुलाएगा आ जाओ भोजन करो। तो कछुए निकले आए गंगा जी समय से, सैकड़ों हजारों ही कछुए आ गए। अब कछुओं को आटा चुगा दिया, सब आटा चुगा दिया और कहा अब जाओ, सब चले गए। तो गंगा मैया के बच्चे आ गए भाई, इनको भोजन दे दिया, ऐसे संत थे। एक कथा हमने सुनी है गुरुजनों से, एक समय नारद बाबा अपना कीर्तन करते वीणा बजाते हुए, तो उनके मन में आ गया कि मैं गान विद्या में बड़ा तेज हूं, भाव आ गया मन में। तो भगवान का ये स्वभाव है कि भक्त का अभिमान उनको सुहाता नहीं। संसति मूल फूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। तो घूमते घूमते गए तो अगर एक नगर आ गया, बड़ा ही सुंदर नगर, उस नगर में स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष। तो उनको देखा तो सुंदर तो बहुत है पर सबके सब अंग भंग, किसी के हाथ टूटा हुआ, किसी के पैर टूटा हुआ, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का कोई कान नहीं है, ऐसे सब जितने सबके अंग भंग। तो नारद बाबा ठहरे, पूछा भी क्या बात है ये, ऐसा क्या नगर है और क्या इसमें मनुष्य सबके सब अंग भंग कैसे है। तो महाराज आपने सुना होगा एक नारद बाबा है, उनको गाना बजाना तो आता है नहीं, हम सब वो छह रागनी और 36 रागनी और इनके सब के सब बाल बच्चे, ये हम लोग हैं, गंधर्व नगर है हमारा, इसमें हम राग रागनी सब रहते हैं। तो वो राग गाता है तो किसी समय में कोई राग गा देता है, किसी समय में कोई गा देता है, चेहरा भगवान का भक्त, इस वास्ते उसकी जबान ठीक निकलती है। तो किसी का कान छोड़ दिया, किसी का हाथ छोड़ दिया, किसी की टांग छोड़ दी तो वो हमारा अंग भंग हो जाता है। इस वास्ते ये नारद जी की कृपा है जो हम ऐसे हो गए। तो भाई तुम्हारे ठीक कैसे हो, कोई ठीक जानकार हो और वो सांग उपांग गाओ तो हमारे अंग सब ठीक हो जाए। ऐसे कौन है कि भगवान शंकर है। तो नारद जी शंकर जी के पास गए और जाकर महाराज ऐसे हमने तो बड़ी भूल कर दी, हमारे से गलती हो गई, तो अब आप ऐसा गावेंगे जिससे उनके अंग उपांग सब ठीक हो जाए। शंकर बोले भाई गाना सुनावे किसको, कोई सुनने वाला हो तो। नारद जी के राह का आगमन और भी गल गया, समझदार मैं गाना जानने वाला हूँ, तुम तो सुनने के भी अधिकारी नहीं हो। अब कोई सुनने वाला नहीं तो भैंस आगे भागवत है क्या करता उसे, कोई सुनने वाला जानने वाला तो हो। तो महाराज सुनने वाले कौन है, कि सुनने वाले भगवान विष्णु है। तो उनसे प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी का हम भी आएंगे, इंदिरा जी का हम भी आएंगे, भाई भगवान शंकर ये नृत्य गाते हैं तांडव, जब गान गाते हैं मस्ती से तो वो तो गाना हम भी सुनेंगे। बहुत लोग इकट्ठे हो गए, देवता लोग। अब नारद जी ने गाना छेड़ा तो भगवान विष्णु विराजमान थे जिस आसन पर, वे बस पानी हो गए और जल ही हो गया जल ही। मालकोष के स्वर सुने, पाहन पिघल जाए, पत्थर भी पिघल जाता है। तो भगवान पिघल गए, तो ब्रह्मा जी ने वो जल ले लिया अपने कमंडलू में। फिर दूसरी अग्नि गाय उसे वो विष्णु भगवान प्रकट हो गए, और वो जल कमंडलू में था अलग लिया वो जल ही रह गया। ऐसे कई युगा तो ब्रह्मा जी कमंडलू में रहा। जब भगवान ने वामन अवतार लेकर बलि से पृथ्वी ली, उसे वो नापने लगे तो वो जल वो चरण चला गया ठेठ ब्रह्मा जी के वहां, तो ब्रह्मा जी ने उसी जल से चरण धो लिया। वो जल भी उसी में कमंडलू में। और जब ये पीढ़ियां की पीढ़ियां खत्म होगी, भगीरथ ने जब प्रार्थना की है तो ये भगीरथ के काम से गंगा जी प्रकट हुई है। बड़ा आई है, बड़ी कथा आती है, विचित्र गर्भ गंगा जी ने स्वीकार किया। आवे तो हमारे को रखेगा कौन, तो शंकर भगवान से प्रार्थना करी। शंकर भगवान जटा बढ़ा करके खूब खड़े हो गए। अब गंगा ऊपर से उतरती है, वो समझती है कि ये कहने ले जाऊंगी पाताल में साथ ही, परंतु जटा में जब गई है, जटा कटाह संभ्रम अभिमन्य लिंब निर्धरी बिलोल बीजी वल्लरी विराज मान मूर्धनी, जटा रूपी कड़ा है कि बीच घूमती रही गंगा जी। एक सज्जन थे, वो कहते थे मेरे को तो ऐसा दिखता है कि ये गंगा जी यहां से गंगोत्री से चल करके ठेठ गंगा सागर जाती है, वहां तो भगवान की जटा में ही चलती है, सबकी सब जटा में ही चल रही है। ऐसे जटा में भगवान ने शंकर ने रख लिया। भगीरथ ने कहा कि महाराज बीड़ियां तो खत्म हो गई और आपने वहीं रोक लिया, तो फिर शंकर से प्रार्थना करते उन्होंने थोड़ा सा जल निचोड़ दिया। उसके तीन धाराएं हो गई, एक धारा आकाश में, एक पृथ्वी पर, एक पाताल में, ये त्रिपतगा गंगा चल। तो वो साक्षात ये ब्रह्म द्रव है, सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वयं ही जल रूप से बहते हैं। उसके प्रकट होने का दिन ये दशमी कहते हैं, तो वो दिन है, उस दिन आरती करो, पुष्प चढ़ाओ, पूजन करो, स्नान करो, आचमन करो। गंगा जी का जितना आदर किया जाए, इसकी बहुत ऐसी ऐसी कई कथाएं लोगों में प्रचलित है। आजकल भी गंगा जी का बड़ा महात्म्य है, जो श्रद्धालु होते हैं उनको उसका अनुभव होता है। गांव में थोड़ा वर्ष पहले इसका विशेष विशेष चमत्कार होता था, वे पैदल आते गंगा जी का जल लेकर जाते, वहां जाने पर उन पूजन करते, रात्रि में जागरण करते और खूब स्तुति प्रार्थना करते, तो गंगा जल पड़ा हुआ पात्र है उसमें से गंगा निकले आए थे, बाहर पानी आ जाता था। ऐसी बातें संत से अच्छे पुरुष ने सुनी है। तो गंगा की बड़ी महिमा है, और अपने तो भगवान की कृपा है जो गंगा जी के किनारे बैठे। ये उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, सोचना मछली जाननवी सावराणम हिमालय हो, और प्रणव सर्वेदेशु, और यज्ञानाम सब यज्ञोस्मी अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। अपने तो सामग्री बहुत इकट्ठी आई हुई है, ऐसे लेकर भगवान की तरफ चले तो सुगमता से कल्याण हो जाए। नारायण 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 नारायण।